হৃদয় গৌর হরিবোল 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 হৃদয় গৌর হরিবোল শ্রীনাশক লক্ষ্মী শ্রী ভগবান কি ভক্ত স্বরূপ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জগদুশল প্রভুপাদ কি ভাই গৌর প্রেমানন্দে
কুঞ্জ বিহারী গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী জয় জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরাবন চারি যমুনা তীরাবন চারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরাবন চারি যমুনা তীরাবন চারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranita Jaya, Gauranita Jaya, Gauranita Jaya, Gauranita. Jaya Jagannatha Jaya, Jagannatha Jaya, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, हरि बोल नित्य गोरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण। जो भक्तियाँ उपस्थित हैं उनसे विनती है कि कृपया अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसवां स्कंध पचासवां अध्याय। कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। श्लोक संख्या 48। तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम् तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम् तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम् तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। दो प्रभु जी दो माता जी।
तस्माद् अद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम् तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। तस्माद्य विधास्याम दुर्गम विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे तस्माद् अद्य विधास्याम दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधाय यावनम घातयामहे तस्मादद्य विधास्याम दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे तस्मात् इसलिए अद्य आज विधास्यामः बनाएंगे दुर्गम किला द्विपद मनुष्यों के लिए दुर्गमम दुर्गम तत्र वहां ज्ञातीन अपने परिवार वालों को समाधाय रखकर यवनम बर्बर को घातयामहे हम मार डालेंगे अनुवाद अतः हम तुरंत ऐसा किला बनाएंगे जिसमें मानवी सेना प्रवेश न कर पाए अपने पारिवारिक जनों को उसमें वसा देने के पश्चात हम म्लेच्छराज का वध करेंगे
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 50वें अध्याय की चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना। कल हमने ये देखा कि जब मगधराज अपनी सेनाओं को लेकर आए और मथुरा को घेर लिया तो श्री कृष्ण और बलराम अपने शंखों को बजाते हुए छोटी सी सेना साथ में लेकर बाहर निकल आए और उन्होंने पूरी तरह से जरासंध के सेना का विनाश कर दिया। अकेला जरासंध रह गया। बलराम जी ने जरासंध को बांधना शुरू कर दिया वरुण के पाश से और इस मर्त्यलोक के पाशों से भी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और जरासंध को मुक्त कर दिया। बहुत ही लज्जित होकर जरासंध अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई ऐसे राजा और तथाकथित मित्र उन्हें मिले जिन्होंने उनसे कहा कि हौसला खोना नहीं, केवल एक युद्ध हार गए हो, उसमें क्या है। सबने अपनी अपनी भी कहानियां बताई होंगी कि मैं भी कितने युद्ध हार गया, उसमें क्या है। तो हारना जीतना ये सब जीवन का खेल है, इस तरह की बातें सबने कही होंगी और कहा कि ये सब कर्मों का फल है, इसलिए आपको निराश नहीं होना है। आप वापस जाइए और एक सेना एकत्र कीजिए और पुनः प्रहार कीजिए, आक्रमण कीजिए मथुरा के ऊपर और आपकी जीत निश्चित है। तो हौसला बढ़ गया जरासंध का। जब मगध लौट कर आया, पुनः एक बड़ी सेना साथ में बुलाकर फिर से मथुरा पर आक्रमण किया। इस बार भी श्री कृष्ण और श्री बलराम ने उनकी सेनाओं को विध्वंस कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया। इस प्रकार 17 बार हुआ। 17 बार मगधराज जरासंध अपने सेनाओं को लेकर आता और हर बार श्री कृष्ण और बलराम एक छोटी सेना लेकर उनकी सारी सेना को नष्ट कर देते और अकेले जरासंध को छोड़ देते। अब 17 बार होने के बाद भी हौसला नहीं खोया, 18वीं बार वो आया। अच्छा, अब जब 17वीं बार 18वीं बार जब हम करते हैं, हम कल ये चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन में भी हौसला बनाए रखना चाहिए। तो आपको किसी आचार्य की लीला याद आती है जब उन्होंने लगातार 17 बार 18 बार कुछ प्रयास किया? रामानुजाचार्य, क्या हुआ था उनके साथ? ठीक है, और स्पष्टीकरण कोई? नहीं, 17 बार रामानुजाचार्य की बात है, परंतु और स्पष्टीकरण चाहिए। हाँ, रामानुजाचार्य, जब रामानुजाचार्य को बताया गया, वो जानना चाहते थे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस भगवद गीता के श्लोक का तात्पर्य। ये बहुत गुह्यतम श्लोक है, ये तो जान गए थे, परंतु इसका गोपनीय तात्पर्य जानना चाहते थे। तो उनको बताया गया, आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाइए। तो बहुत दिनों तक चल के गोष्ठी पूर्ण के कुटीर में पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, कौन बोल रहा है? कौन है? मैं रामानुज हूं, क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा अब नहीं दे सकता और कभी, तो चले गए वापस। दूसरी बार आए, दूसरी बार भी यही हुआ। चले गए, फिर तीसरी बार आए, ऐसे 17 बार आए, उन्होंने भी हौसला नहीं खोया। अंत में रामानुजाचार्य को पता चला तो उन्होंने मैं रामानुज ऐसे नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा तमिल भाषा में, अडियन। अडियन का मतलब क्या है? तमिल भाषी को हमने पूछा, अडियन का मतलब है दास, आपका दास। जब उन्होंने सुना आपका दास, तब उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, और फिर उन्होंने उनको मंत्र का अर्थ और उनको जो है वो पूरा बताया, गोपनीय बातें बताई, और एक ऐसा मंत्र भी बताया जो उद्धार के लिए। तो खैर इस प्रकार से वो 18 बार गए। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे ये बोल नहीं रहे हैं, चलो अभी क्या फायदा, अभी हम तो दूसरा ही कुछ कर लेते हैं, ऐसे नहीं सोचा। तो खैर यहाँ आध्यात्मिक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि ये जो दृढ़ता चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, वो कितना आवश्यक है। जब भौतिकतावादी व्यक्ति भी ऐसे कर सकते हैं, तो फिर हम जो साधक हैं भक्ति के रास्ते में, हम क्यों नहीं कर सकते, ये प्रश्न उठता है। तो खैर 18वें बार फिर से जरासंध आ गया, और ऐसे समाचार मिल गया मथुरा में कि बस आज या तो कल तक जरासंध अपनी सेना को लेकर पहुंचने ही वाला है। और उधर अचानक क्या हो गया, किसी दूसरे दिशा से काल यवन नाम का एक यवन बर्बर बोलते हैं, जो असभ्य जाति होते हैं, जैसे अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द आता है, वो बर्बर से, जो असभ्य लोग हैं। तो असभ्य लोगों के जो एक राजा थे काल यवन, वो अपने लाखों लाखों बल्कि 3 करोड़ सैनिकों को लेकर आया, मथुरा को घेर लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, और बलराम जी से उन्होंने विचार विमर्श किया कि अरे ये क्या हो गया, उधर जरासंध अपनी सेना को लेकर आने ही वाला है, आज नहीं तो कल, और यहाँ पर ये बर्बर राजा भी अपनी सेना को लेकर आया है, यदि हम दोनों और हमारी सेना को लेकर बाहर गए और इस यवन से हमने युद्ध कर लिया, तब तक यदि जरासंध आ जाए अपनी सेना को लेकर, तो जरासंध निश्चित ही हमारे प्रिय मथुरा वासियों को, यदुवंशियों को गिरफ्तार कर लेगा, पराजित कर लेगा, उनको हानि पहुंचाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कल शाम तक हम यहां तक पहुंचे थे। तो आज का श्लोक जो है, इसमें श्री कृष्ण अभी अपने निष्कर्ष पर, अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुरंत हे बलराम जी, हमें एक किला, एक दुर्ग तैयार करना चाहिए, जिसको कि कोई मानवीय शक्ति पार या छेद न कर सके। जैसे कि अयोध्या, अयोध्या का नाम क्या है, अर्थ क्या है, अयोध्या, जिसके विरुद्ध युद्ध नहीं किया जा सकता, या युद्ध में जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, अयोध्या। तो जो भी युद्ध करेगा इस अयोध्या के सामने वो टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे कोई किला हमें बनाना है, हम बनाएंगे, जिसको कि कोई मानवीय शक्ति पार नहीं कर पाएगी। तो हमारे परिवारजनों को हम वहां पे स्थापित कर देंगे उस किले में, और फिर इस बर्बर राजा को निपटा लेंगे, फिर उसकी हत्या कर लेंगे। तो इस प्रकार से अभी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है श्री कृष्ण ने, और संपूर्ण कृष्ण लीला में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वृंदावन की लीलाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, कब आया? जब अक्रूर जी आए वृंदावन में, कंस के द्वारा भेजे गए थे, और कंस ने कहा था अक्रूर जी से कि कृष्ण और बलराम को यहाँ एक धनुर्यज्ञ के बहाने बुलाकर ले आओ। तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ है कृष्ण कथा में। क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण और श्री बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए प्रकट लीला में। अप्रकट लीला में तो वृंदावन में नित्य रूप से श्री कृष्ण और श्री बलराम निवास करते हैं, लीला करते हैं अपने पार्षदों के साथ। तो ये एक मोड़ है। अब एक दूसरा मोड़ है काल यवन का उसी समय आना जबकि जरासंध आने ही वाला था। और ये मोड़ क्यों है इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि जिस प्रकार से अक्रूर के वृंदावन आने से यह निर्णय होना था कि श्री कृष्ण वृंदावन लीला समाप्त करके मथुरा लीला प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से इस घटना से अब यह निर्णय हुआ कि मथुरा लीला समाप्त करनी थी श्री कृष्ण को और द्वारका लीला प्रारंभ करनी थी। तो जिस किले का उल्लेख यहां पर श्री कृष्ण कर रहे हैं वो द्वारका है। तो द्वारका एक दुर्ग है, तो ऐसे जो कि कोई मानवीय शक्ति जिसको पार नहीं कर सकती। तो भगवान कृष्ण को अपने स्वजनों की बहुत चिंता होती है। तो स्वजन कौन होते हैं? केवल उनके रिश्तेदार नहीं परंतु उनके भक्त भी। तो उनके भक्तों को कभी कभी स्वजन कहा जाता है, हरि जन कहा जाता है, हरि के जन। तो फिर ऐसे एक निर्णय हुआ। तो श्री कृष्ण ने अब सोचा द्वारका लीला प्रारंभ करने का समय आ गया, और ये बर्बर राजा काल यवन एक निमित्त था। वैसे भगवान श्री कृष्ण एक कार्य में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो उन्होंने शिव जी के वरदान को भी रखा, नारद जी के मान को भी रखा, और अपनी इच्छा को भी पूर्ण की, और साथ साथ में काल यवन आदि इन सब का उद्धार किया, और आगे चल के देखेंगे और कौन से एक राजा का उद्धार भी किया। इस रहस्य का खुलासा आज नहीं होगा, कल होगा। तो खैर बहुत चीजें भगवान श्री कृष्ण को करने की इच्छा थी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति सम्मंत्र्य भगवान दुर्गम द्वादश योजनम अंतः समुद्रे नगरम कृत्स्नाद्भुतम अचीकरत। इति सम्मंत्र्य, सम्मंत्र्य अर्थात विचार विमर्श करके भगवान। तो कृष्ण भगवान ने बलराम जी के साथ ऐसे विचार विमर्श करके क्या निर्णय लिया? दुर्गम द्वादश योजनम, कि ऐसे दुर्ग बनाया जाए, ऐसे किला बनाया जाए जिसकी परिधि कितनी होगी? द्वादश योजनम। द्वादश अर्थात 12। एक योजन कितना होता है? लगभग 8 मील। तो द्वादश योजन अर्थात लगभग 100 मील। तो 100 मील लंबी परिधि का एक किला या दुर्ग हम बनाएंगे। तो 100 मील ये बहुत होता है, 100 मील अर्थात लगभग 150 किलोमीटर होता है। तो यहां से कोल्हापुर कितना है? 110 किलोमीटर। तो यहां से हुबली कितना है? लगभग उतना ही है। तो वो एक किला बनवाना चाहते थे श्री कृष्ण, जो कि यहाँ से हुबली या यहाँ से कोल्हापुर से भी अधिक लंबाई में थी, कि उसकी परिधि जो थी वो लगभग 100 मील की थी। और कहाँ ये किला, ये शहर जो है कहाँ बनाया उन्होंने? अंतः समुद्रे नगरम, एक नगर रूप में उन्होंने ये अंतः समुद्र, समुद्र के बीच में बनवाया। कृत्स्न अद्भुतम अचीकरत, उन्होंने बनवाया अचीकरत। कैसे? अद्भुतम, उसमें कृत्स्नम अर्थात सब कुछ, जो भी कुछ उस समुद्र में रहने वाले किले या शहर नगर के अंदर था वो सब अद्भुत था। तो ऐसे एक नगर की स्थापना भगवान के आदेश से हो गई। कहाँ मथुरा और कहाँ द्वारका, है ना? आप सब भूगोल जानते हैं ना, भारत का भूगोल तो जानते हैं, नक्शा तो भारत का देखा है आपने, आपको पता है कि मथुरा कहाँ है और द्वारका कहाँ है। तो क्या ये भगवान के लिए कठिन है करना? भगवान ने तो अपने भक्तों को आदेश दिया, देवगण तो उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अब आगे आने वाले चार श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे करने वाले हैं कि द्वारके की द्वारका के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी, कौन सी सुविधाएं थी वहां पर, किस प्रकार से यहाँ के रास्ते थे और किस प्रकार से ये शरीर सजाया हुआ था इत्यादि। दृश्यते यत्र ही त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुणम। त्वाष्ट्रम अर्थात त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा। विश्वकर्म जो है ये देवताओं के अभियंता हैं या वास्तुकार हैं। अभियंता अर्थात इंजीनियर, वास्तुकार अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं आर्किटेक्ट। तो देवताओं को जब भी कुछ बनाना होता है तो उनके लिए भी तो कोई अभियंता या वास्तुकार चाहिए ना, तो विश्वकर्म कर लेते हैं। तो विश्वकर्म को आदेश दिया गया कि आप बनाइए इस नगर को, समुद्र के बीच में आप इसका निर्माण कार्य कर दीजिए। और हरिवंश में, हरिवंश पुराण, इसमें कहा गया है कि विश्वकर्म ने इस नगर की स्थापना एक दिन में कर ली। ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब देवलोक का तकनीकी विज्ञान है। आजकल भी यहाँ पर ऐसे तकनीकी ज्ञान बढ़ गया है कि ऐसे बड़े बड़े इमारतों को 5 दिन में खड़ा कर देते हैं। चीन में, अमेरिका, हमने सुना, एक खबर पड़ी थी कि बहुत बड़ी अट्टालिका को उन्होंने 5 दिन में तैयार कर दिया। जगह जगह से कुछ चीज़ें आई, बस बिठाया, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, उनको अपना बनाते हैं, बस फट 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 उन्होंने बना दिया। और हमें आश्चर्यचकित होता है। और जब गिराना भी होता है तो बम विस्फोट करके ऐसे गिराते हैं कि बस किसी को नुकसान न, वही बस गिर जाएगा। तो इस प्रकार से विश्वकर्म ने ये बना दिया। तो आइए हम पढ़ते हैं सुखदेव गोस्वामी का वर्णन कि द्वारका नगरी के अंदर कैसे निर्माण कार्य विश्वकर्म ने किया था। विज्ञान तथा शिल्प कला को देखा जा सक, विश्वकर्म के पूर्ण विज्ञान तथा शिल्प कला को देखा जा सकता था। तो यदि विश्वकर्म के वास्तविक नैपुण्य को देखना है तो जाके द्वारकापुरी देखना चाहिए, आगे चल के इसका नाम द्वारका पढ़ना था। तो आइए सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं। उसमें चौड़े मार्ग, व्यावसायिक सड़कें तथा चौराहे थे जो विस्तृत भूखंड में बनाए गए थे। उसमें भव्य पार्क थे, पार्क अर्थात उद्यान, और स्वर्गलोक से लाए गए वृक्षों तथा लताओं से युक्त बगीचे भी थे। उसके गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे जो आकाश को चूम रहे थे। उनकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थीं। सोने से आच्छादित घरों के सामने का भाग सुनहरे घड़ों से सजाया गया था और उनकी छतें रत्न जटित थीं तथा फर्श में बहुमूल्य मरकत मणि जड़े थे। घरों के पास ही कोषागार, भंडार तथा आकर्षक घोड़ों के अस्तबल थे जो चांदी तथा पीतल के बने हुए थे। प्रत्येक आवास में एक चौकासी बुर्जी थी जो घरेलू अर्चा विग्रह के लिए मंदिर था। यह नगर चारों वर्णों के लोगों से पूरित था और यदुओं के स्वामी श्री कृष्ण के महलों के कारण विशेष रूप से अलंकृत था। तो ऐसे विशाल शहर, एक नगर, इसमें इतना ऐश्वर्य, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे एक मंदिर के लिए यदि हम ऐसे कुछ करना चाहें तो कितना खर्च हो जाएगा, वो भी कितने सालों तक करना करते करते बहुत परेशान हो जाते हैं। और कोई करे भी इस प्रकार तो चोरी का डर। हमारे दिल्ली में हमारे एक संस्था का मंदिर है, वहाँ पे जब नया मंदिर बनाया गया था उसके पहले एक छोटे मंदिर में वो लोग रहते थे जब तक कि बड़ा मंदिर न बन जाए। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी छोटी मूर्ति थी, जैसे ही हमारे पास भी है ना छोटी मूर्ति देखते हैं सिंहासन पर, तो ये सोने का रंग है। तो ऐसे अफवाह फैल गया किसी तरह से कि ये सोने की मूर्ति है प्रभुपाद जी की। तो चोर डकैत आए रात को, उन्होंने तोड़ दिया, ताला तोड़ के प्रभुपाद जी की मूर्ति चोरी करके ले गए। फिर बाद में हंगामा हुआ, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। भक्त नहीं थे लेकिन उन्होंने सोचा सोने की मूर्ति है। इसलिए हमारे मंदिरों में प्रभुपाद जी ने कहा था असली सोना का प्रयोग नहीं करना हमारे विग्रहों के लिए, सजावट के लिए, क्योंकि न जाने कौन किस दृष्टि से देखेगा, किसकी भावना क्या होगी, कौन कैसे भावना लेकर यहाँ आता है, कहना मुश्किल है। वैसे तो चाहें तो भगवान के लिए जितना भी हम ऐश्वर्य प्रदान करें वो कम है, परंतु द्वारका के समय ऐसे कोई डर नहीं था। तो यहाँ एक बहुत अद्भुत वर्णन किया गया है और तात्पर्य में श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि वास्तु शब्द का तात्पर्य है कि जहाँ भी इमारतें मकाने आदि बनी गई थीं वो ऐसे स्थानों में बनी गई थी जहाँ पर्याप्त भूमि था और वहाँ पे हरियाली के लिए बहुत जगह छोड़ा गया था। यहाँ शहरों में आजकल क्या होता है कि इतने पास 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 सब घर रहते हैं, हरियाली का कोई नाम ही नहीं। तो वास्तव में मन को संतुष्ट करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए हरियाली को दिखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो वास्तुकार आदि होते हैं, जो शहरों का निर्माण आदि करते हैं, विशेष रूप से आप देखेंगे विदेशों में ये बहुत ख्याल रखते हैं। समय जगह जगह पर आप देखेंगे कोई बगीचे हैं, कोई उद्यान है, कोई हरियाली है, ये सब होना बहुत आवश्यक है। तो यद्यपि द्वारका इतनी बड़ी नगरी थी, इतने बड़े बड़े महल और मकान आदि सब थे, बड़े बड़े द्वार थे, फिर भी हरियाली थी, बगीचे थे, उद्यान थे, पेड़ फूल आदि सब थे वहाँ पर द्वारका में। तो द्वारका ये नाम वास्तव में पड़ा क्यों? ये द्वारावती ऐसे पुराणों में द्वारका का नाम है, अर्थात जो भगवान के लिए या भगवान के धाम के लिए एक द्वार है, या जिनमें बहुत सारे द्वार हैं, द्वारका या द्वारवती या द्वारकापुरी। तो श्रीमद् भागवतम में द्वारकापुरी के अंदर क्या था वो आगे चल के 70वें अध्याय में या 69वें अध्याय में विस्तार में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण कैसे वहाँ रहते थे, उनके महलों का ऐश्वर्य कैसे था आदि। तो द्वारका लीला में हम ये देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि श्री कृष्ण ने 16108 रानियों से विवाह कर लिया और हर एक रानी को एक महल दे दिया, विशाल महल, छोटा छोटा महल नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ लोग अपने घर का नाम कुछ फलाना फलाना महल रखते हैं, इस प्रकार का महल नहीं। ये महल तो भगवान कृष्ण की, एक महल तो इतनी बड़ी महल, बड़े बड़े गगनचुंबी अट्टालिकाओं के समान थी और ऐसे 16108 बड़े बड़े महले थी और ये केवल कृष्ण के, और जितने भी यदुवंशी थे जो राजकुमार थे, राजा उग्रसेन थे इत्यादि, उन सब के अपने अपने बड़े 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 महल और अन्य जैसे यहां बताया गया चातुर्वर्ण, जितने भी अन्य वर्णों के सब के लिए पर्याप्त जगह थी वहां, कोई भीड़ वगैरह नहीं थी। तो खैर ऐसे द्वारकापुरी का ऐश्वर्य था। यहां द्वारकापुरी में श्री कृष्ण एक द्वारकाधीश के रूप में विराज करते हैं या करते थे प्रकट लीला में, करते हैं ये वर्तमान लीला अप्रकट लीला में। तो प्रकट लीला में वो वहां पर रहा करते थे। एक राजकुमार के रूप में ऐश्वर्यों से युक्त द्वारकाधीश 16,108 रानियों के साथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण धाम है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन, मथुरा और द्वारका, ये तीन स्थान संपूर्ण ब्रह्मांडों के सबसे महत्वपूर्ण लोकों या ग्रहों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में आप देखिए कितने महत्वपूर्ण बड़े बड़े लोक हैं, जैसे कि स्वर्ग लोक है या महर लोक, जन लोक, तप लोक, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ब्रह्मांड के भीतर। परंतु ये मथुरा, द्वारका और वृंदावन ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और हम सब जानते हैं कि चार धामों में एक है ये द्वारका। अन्य धाम कौन से हैं चार धामों में? बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। तो ये चार धाम भारत में हैं। तो ये चार पुरी माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो खैर, अभी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बहुत सी चीज़ें ढूंढ निकाली हैं समुद्र के भीतर। आज जहां द्वारका एक शहर है, तो उसके तट से जो समुद्र लगता है, वहां उस समुद्र के बीच में नीचे वैज्ञानिकों ने ऐसे चीज़ों को ढूंढ निकाला है जिससे ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि वहां पहले एक शरीर, एक शहर था। अक्सर क्या होता है आधुनिक काल में, विशेष करके लोग इन चीज़ों को काल्पनिक समझते हैं, इनकी ऐतिहासिकता पर शक या संशय करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब ऐतिहासिक स्थान नहीं है, कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, ये ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं। परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारे लिए, क्योंकि हम सब भक्त हैं, शास्त्रों के वचन ही पर्याप्त हैं, हमें और किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती ये विश्वास करने के लिए कि द्वारका था और श्री कृष्ण थे और वहाँ पर रहते थे, और जो भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन है उसको हम सत्य मानते हैं, तनिक भी संशय नहीं करते, भले वो हमारे बुद्धि में बैठे भी नहीं कभी कभी। जैसे पांचवें स्कंद में संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन है, हमें समझना इन चीज़ों को बहुत मुश्किल है, फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि ये वेद वाक्य है। तो इस प्रकार से हमें कोई ऐसे प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है कि कोई सबूत मिले, कोई समुद्र में कोई हमें एक शहर मिल जाए, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। परंतु जो संशयात्मा है या जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी श्रद्धा बहुत कोमल है, कमज़ोर है, तो जब उनको बताया जाता है कि देखो यहाँ समुद्र में ये प्रमाण पाया गया है, तो फिर उनकी श्रद्धा बढ़ जाती कि हाँ 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 ये ठीक है, तो ऐसे हुआ था, नहीं तो वो सोचते हैं कि ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। तो ऐसे भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे काफ़ी कुछ ढूंढ निकाला है उसमें। उनमें से एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनको कि एक पत्रकार ने एक बार पूछा था, मुझे याद है उस समय पढ़ा था हमने, तो किसी ने पूछा उनको कि आप क्या मानते हैं कि जो महाभारत में लिखा हुआ जो वर्णन है, जो द्वारका शहर है और जो आपने समुद्र में पाया है, या क्या वो दोनों एक ही हैं? क्या सबूत है इसका? क्या कोई सबूत है, प्रमाण है? तो उन्होंने एक उत्तर दिया था, नाम पट छोड़ के सारा सबूत है। नाम पट समझे ना, जिसमें नाम, नेम प्लेट, जिसमें नाम लिखा होता है। जैसे आप किसी घर में जाओगे तो आपको पता है कि ये रहने वाला किसका है, लेकिन बाहर हर एक घर के बाहर नाम रहता है ना, घर का नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ मंदिर के बाहर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इत्यादि लिखा गया है, समझ लीजिए वो हमने निकाल दिया, तो क्या ये इस्कॉन मंदिर नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो कोई आएगा वो पूछेगा कि अरे वो आप गए वहाँ पे, क्या प्रमाण है कि वो इस्कॉन मंदिर है? वो कहेगा भाई नेम प्लेट के अलावा इस्कॉन ही है, सब कुछ है वहां। तो उसी प्रकार से उनके कहने का तात्पर्य था कि ये शत प्रतिशत वही द्वारका है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते, कोई संशय हमें नहीं करना चाहिए। और एक वैज्ञानिक एक पद्धति है जिसके द्वारा वैज्ञानिक ये तय कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु की आयु कितनी है, वो कितनी पुरानी है वो वस्तु, इसको अंग्रेजी में कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो इसके द्वारा ये प्रमाण ये सिद्ध किया गया है कि द्वारका वहाँ समुद्र के नीचे जो मिले हुए जो पदार्थ हैं वो लगभग 3500 BC मतलब आज से लगभग 5000 से ऊपर वर्ष पुराने हैं। और यहाँ भागवतम में जैसे वर्णन है काल की, वो ठीक उसी से ठीक बैठता है। और जो और आगे चल के खगोलीय विशेषज्ञ जो होते हैं, खगोलीय ज्ञान से उन्होंने जो विश्लेषण किया था, जो भी गणित ज्योतिष का वर्णन महाभारत आदि में है, उसके द्वारा उन्होंने साबित किया कि महाभारत के वर्णन भी सही हैं और लगभग इसी समय में हुए थे। इस प्रकार से यहाँ से प्रमाण लिया, वहाँ से प्रमाण लिया, यहाँ से प्रमाण लिया, और भागवतम में भी वही कहा गया है। तो इस प्रकार से यदि कोई ऐसे साबित करना चाहे कि द्वारका वहाँ पर थी, तो उनके लिए भी ऐसे सबूत विद्यमान है। यद्यपि हम भक्त होने के कारण अधिक परवाह नहीं करते हैं, फिर भी ये जानना हमारे लिए अच्छा है। तो खैर, अभी ये द्वारकापुरी का निर्माण तो हो गया, उसमें इतने अच्छे अच्छे सारी इमारतें भवने सब बन गए। और आगे चल के सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि और देवलोक के निवासी आए, देवतागण आए, और वो सब भेंट देने लगे द्वारकापुरी में, किसी ने कुछ दिया तो किसी ने कुछ। तो महेंद्र इंद्र ने क्या किया, उन्होंने आके सुधर्मा, सुधर्मा जो सभागृह है, जैसे हमारे यहाँ देश में लोकसभा है ना, लोकसभा की इमारत में सांसद, संसद है वहाँ पे, संसद भवन, वहाँ पे सारे हमारे राजनीति के राजनेता मिलते हैं ना, वहाँ बैठ के फिर चर्चाएं करते हैं। तो उसी प्रकार से द्वारका में भी ऐसे एक सभागृह या संसद भवन था जिसको सुधर्मा कहा जाता था। तो ये सुधर्मा जो है, ये इंद्रदेव ने द्वारका को भेंट दिया एक पारिजात वृक्ष के साथ। और ये सुधर्मा सभागृह की विशेषता क्या थी, सुनिए। यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्मेर न युज्यते। इस लोक को, भूलोक को मर्त्य लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग, लोगों की मृत्यु होती है तो रहने वाले लोगों को भी मर्त्य कहते हैं, इसलिए ये मर्त्य लोक है। तो यत्र च अवस्थितः मर्त्यः, तो जो साधारण मनुष्य, जो मर्त्य है, जो स्थित होता है किसमें, इस सुधर्मा सभागृह में, मर्त्य धर्मेर न युज्यते, तो यहां उसकी मृत्यु नहीं होती है। यह भौतिक जगत के जो नियम है उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, जैसे बुढ़ापा हो, बीमारी हो, मृत्यु हो, सुधर्मा सभागृह में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो ऐसे साधारण सभागृह नहीं था ये कोई। और आगे पारिजात वृक्ष भी दिया श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए। और वरुण देव आए, वरुण देव ने क्या दिया, श्यामयिक वर्णान वरुणो हयान शुक्लान मनोजवान। उन्होंने ऐसे घोड़े दिए जो कि मनोजवान, जो कि मन के गति से दौड़ सकते थे। मन की गति कितनी तेज है, तो वरुण ने दिए हुए जो घोड़े थे वो इतने तेज थे कि मन की गति की तरफ दौड़ सकते थे। हयान शुक्लान और श्यामयिक वर्णान, हयान अर्थात घोड़े, उनमें से थोड़े श्यामयिक श्याम वर्ण के थे और थोड़े शुक्लान थोड़े सफेद रंग के थे। तो ऐसे घोड़ों का की भेंट वरुण देव ने
द्वारका को दी भगवान कृष्ण को। अष्टो निधिपति ही कोशान, निधिपति अर्थात देवलोक के जो खजांची हैं, तो उन्होंने अपने अष्ट निधि वो प्रदान कर दी द्वारका को। लोकपाल निजोदयान, तो सारे जो लोक जितने भी लोक हैं उनके जो लोकपाल हैं उन्होंने अपने अपने ऐश्वर्यों को भी दे दिया वहां पर। और फिर यद्यत भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासु हरौ भूमिगते नृप। तो यद्यत भगवता दत्तम, तो जो जो भगवान के द्वारा प्रदत्त था किनको, आधिपति जो सारे लोकों के स्वामी थे, अलग अलग लोक है ना इस भौतिक ब्रह्मांड में, तो सबके कोई ना कोई अधिष्ठाता एक देव होते हैं आधिपति, तो वो सब वहां पर आए और उन्होंने क्या कर दिया, सर्वम प्रत्य प्रत्यर्पयाम आसुहु, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने जितने भी ऐश्वर्य थे वो प्रदान कर दिए। वो ऐश्वर्य उनको कहाँ से मिले थे, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त थे, भगवान से उन्होंने ये ऐश्वर्य पाया था, अब द्वारका में भगवान को ही उन्होंने अर्पण किया। जैसे हम गंगा की पूजा करते हैं तो गंगा जल गंगा में अर्पण करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं तो दीप से सूर्य की उपासना करते हैं, तो हम जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, देखिए हम अगरबत्ती अर्पण करते हैं, दीप हो, चामर हो, मोर पंख हो, जल आदि हो, ये सारे पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, पृथ्वी से ही मिलते हैं, और पृथ्वी किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है, तो भगवान इस पृथ्वी के मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, और इन्हीं वस्तुओं को लेकर हम भगवान की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, और क्या कर सकते हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यहाँ जो भी कुछ ऐश्वर्यशाली है, जो भी सुंदर है, जो भी तेजस्वी है, वो उन्हीं से आता है। यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तत एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो यद्यत जो भी यहाँ सत्वम जो भी वस्तु है, अस्तित्व है, जिन चीज़ों का जो विभूति मत हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, जो श्रीमत जो बहुत सुंदर हैं और जो बहुत तेजस्वी हैं, ये जान लेना कि वास्तव में ये मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र हैं, स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो देवताओं की शक्ति, देवताओं का ऐश्वर्य इतना अपार है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, परंतु भगवान के लिए ये तो उनके ऐश्वर्य के स्फुलिंग से उद्भूत होता है। तो सारे देवताओं ने अपने ऐश्वर्यों को द्वारका में सब प्रकट कर प्रस्तुत कर दिया। और फिर अद्भुत चीज हो गई, ध्यान से सुनिए अब क्या हुआ। अब द्वारका शहर तो बन गया, हमारे कल्पना के बाहर इस प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त द्वारका शहर बन गया, परंतु कौन रहेगा उसमें, खाली शहर है। अब यहाँ मथुरा के निवासी हैं यहाँ पर इतनी दूर, और वहाँ खाली शहर है, तो द्वारका के निवासी होंगे कैसे। तो भगवान के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना बात। तो भगवान ने क्या किया, तत्र योग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनम हरिहि। योग प्रभावेन भगवान ने अपने योग शक्ति के द्वारा नीत्वा वो ले आए सर्वजनम हरिहि। हरि ने सारे मथुरा निवासियों को ले आकर द्वारका में रख दिया। कैसे रख दिया, यहां तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण के एक श्लोक से कहते हैं, सुषुप्तान मथुरायांतु पौरांस्तत्र जनार्दनः। सुषुप्तान, सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद, मथुरायान जो मथुरा के लोग थे, जब वो रात में उद्धृत्य सहसा रात्रो द्वारकायाम न्यवेशयत,
तो गहरी नींद में जब रात के समय मथुरा के निवासी सो रहे थे, तो उस समय अपनी योग शक्ति के द्वारा उन्होंने उनको मथुरा से ले आकर द्वारका में डाल दिया। और फिर क्या हुआ? प्रबुद्धाह ते जना सर्वे पुत्रदार समन्विताह हैम हर्म्य तले विष्टा विस्मयम परमम ययुः प्रबुद्धाह। जब चेतना फिर से प्रकट हो गई, नींद से जब वो जागे, तो उन्होंने क्या देखा? ते जना सर्वे, जितने भी ये मथुरा के निवासी थे जो कि गहरी नींद में थे, मथुरा में सो गए थे, क्या देखते हैं? उठे हैं द्वारका में। जैसे कभी कभी हम रेलगाड़ी में जाते हैं ना, सोते हैं एक जगह, उठते हैं दूसरी जगह, परंतु वहां कोई भगवान की रेलगाड़ी की आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने अपनी योग शक्ति के द्वारा एक क्षण में सबको स्थानांतरित कर दिया। सारे लोग सोए हुए थे मथुरा में, और जब उठे, अरे कहाँ आए हम? तो पुत्रदार समन्विता हैम हर्म्य तले विष्टा, उन्होंने क्या देखा? हैम हर्म्य, सोने के किले, सोने के महल के अंदर वो लोग सब थे। पुत्रदार समन्विता, अपने बच्चे थे, अपनी पत्नी थी, अपने सारे सगे संबंधियों के साथ वो ऐसे बड़े बड़े महलों में, घरों में थे जो सोने के बने हुए थे। विस्मयम परमम ययुः, और विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हुआ? हम सो गए थे मथुरा में और जागे हैं यहाँ ऐसे एक अद्भुत नगरी में जहाँ सब कुछ सोने का बना हुआ है। तो ऐसा वर्णन है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपनी द्वारका लीला आरंभ कर ली। सबसे पहले वो स्वयं नहीं गए बलराम जी के साथ, अपनी प्रजा को वहां भेज दिया, अपने भक्तों को वहां स्थानांतरित कर दिया। और परंतु वो बलराम जी के साथ मथुरा में रहे, क्योंकि उनके उद्देश्यों की पूर्ति अभी तक हुई नहीं थी। मथुरा लीला को समाप्त करना था, अभी कुछ रह गया था, छोटी मोटी चीजें रह गई थी, जैसे बड़े बड़े असुरों का वध करना। तो फिर प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमंत्रितः, फिर प्रजा का पालन करने के लिए बलराम जी को उन्होंने वहां रख दिया मथुरा में। जो कि पालन करते हैं, उन्होंने कहा कि आप रहिए, और फिर वो निकल पड़े निर्जगाम पुर द्वारात। निर्जगाम अर्थात बाहर निकले, पुर द्वार अर्थात मथुरा के द्वार से बाहर निकले। पद्ममाली निरायुधः, निरायुधः, बिना कोई शस्त्र हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण निकल पड़े मथुरा के द्वार के बाहर। किसका सामना करने के लिए? काल यवन। और क्या पहना था श्री कृष्ण ने? पद्ममाला, कमल पुष्पों की माला पहनी थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं पद्ममाली। कृष्ण का नाम है पद्ममाली, कमलमाली, कंजमाली, वनमाली। माला पहनने वाले हैं माली, तो पद्ममाली। तो ऐसे कौन सा प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हैं जिसमें भगवान कृष्ण का ये वर्णन हुआ है कि कमल के फूलों की माला पहनते हैं?
नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती महारानी की प्रार्थना की स्तुति, वो क्या कहती हैं? नमः, मैं नमन करती हूँ पंकज नाभाय, वो कृष्ण को जिनकी नाभि कमल पुष्प के समान है। नमः पंकज मालिने, मैं नमन करती हूँ पंकज माली को। मालिने मतलब पंकज माली को, तो मैं पंकज माली को नमन करती हूँ, अर्थात उस व्यक्ति को जो कि कमल की माला पहने हुए हैं। नमः पंकज नेत्राय, नमन करती हूँ उस कृष्ण को जिनके पंकज नेत्र हैं। ये भी एक कृष्ण का नाम है, पंकज नेत्र, कंज नेत्र।
और नमस्ते पंकज अंग्रये, अंग्री मतलब चरण, अंग्रये मतलब द्विवचन दो पैर, नमस्ते पंकज अंग्रये भगवान के चरण कमल हैं, केवल चरण नहीं। तो भगवान के से संबंधित जब भी हम कोई शरीर के अवयव की बात करते हैं तो सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भगवान के लिए हम पैर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, चरण कहते हैं या चरण कमल इत्यादि। तो नमस्ते पंकजांग्रये, इस प्रकार से अब बहुत चमत्कार का कार्य किया श्री कृष्ण ने, सारे मथुरा वासियों को एक क्षण में सोते सोते उन्होंने स्थानांतरित कर दिया, अपने सगे संबंधियों के साथ वो उठे जागे तो देखा अभी वो द्वारका में आई हैं और विस्मित हो गए इसको देखकर। तो इसके साथ 50वां अध्याय समाप्त होता है और अध्याय संख्या 51 प्रारंभ होता है। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि द्वारका की स्थापना तो वहां हो गई, द्वारका वासी भी वहां चले गए, अब कृष्ण और बलराम यहां पर थे मथुरा में अभी, और उनको निपटाना था काल यवन से पहले और बाद में फिर जरासंध। तो पहले काल यवन को के साथ क्या किया उन्होंने, तो जब बाहर निकले श्री कृष्ण पद्ममाली मथुरा के द्वार से, तो फिर काल यवन जो कि अपनी सेना के साथ बाहर खड़ा था, तम विलोक्य विनिष्क्रांतम, विनिष्क्रांतम अर्थात जो बाहर निकले हैं, कौन निकले थे, श्री कृष्ण, तम विलोक्य उनको देखा, तो बाहर खड़े रहने वाले काल यवन ने श्री कृष्ण को देखा। और अभी श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं कि काल यवन ने क्या देखा, कृष्ण को देखा परंतु क्या देखा कृष्ण में, कृष्ण कैसे थे, कृष्ण का वर्णन अब सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं काल यवन के दृष्टि से। उज्जिहानम इवोडुपम, उज्जिहानम अर्थात उदित हुए, कैसे इव उडुपम, जिस प्रकार से उडुप अर्थात चांद, चांद कभी उदित होता है ना, कभी आपने देखा होगा चंद्रोदय को देखा है कैसे चांद का उदय होता है, तो काल यवन को ऐसे प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण ऐसे मथुरा के बाहर आए जैसे मान लो कि चंद्रोदय हो गया है। उडुप, उडुप अर्थात चांद, उडुप चांद को उडुप क्यों कहते हैं, उडुपी जानते हैं ना, उडुपी, तो ये उडुप क्या है, उडु अर्थात जो तारे हैं नक्षत्र उनको उडु कहते हैं, प अर्थात पति, तो जो चांद है चंद्र है वो नक्षत्रों के स्वामी माने जाते हैं, मुख्य नक्षत्रों में से प्रमुख है, भगवद गीता में भी ऐसे भगवान कहते हैं। तो क्योंकि चंद्र नक्षत्रों में से प्रमुख है इसलिए चांद को उडुप कहा गया है, नक्षत्रों के पति या स्वामी। तो जिस प्रकार से चंद्रोदय होता है वैसे श्री कृष्ण दिखाई पड़े किसको, काल यवन को। दर्शनीय दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेय वाससम, दर्शनीय तमम, दर्शनीय अर्थात जो दर्शन करने योग्य हैं, जिनका दर्शन करना चाहिए हमें, जैसा श्रवणीय, श्रवणीय वस्तु कानों के लिए क्या होना चाहिए, केवल कृष्ण कथा कृष्ण नाम, इससे अतिरिक्त ऑन और चीजों को श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है, वो श्रवणीय नहीं है। उसी तरह से कीर्तनीय, बोलने वाले वस्तु कौन से हैं, कृष्ण नाम या कृष्ण कथा, तो ठीक उसी प्रकार से दर्शनीय कौन है या क्या है, भगवान का सुंदर रूप। तो बहुत सी चीजें हैं जो देखने, बहुत देखने के लिए सुंदर लगती हैं, देखने योग्य हैं, परंतु दर्शनीय तमम, दर्शनीय तमम मतलब दर्शनीय व्यक्तियों में से सबसे श्रेष्ठ सबसे सुंदर, तरतम न्याय, आप जानते हैं ना, दर्शनीय
दर्शनीयतर दर्शनीयतम, जो दर्शनीय है देखने योग्य है, दर्शनीयतर अर्थात जो और ज्यादा देखने के लिए योग्य है, और दर्शनीयतम सबसे अधिक। तो ऐसे प्रतीत हुआ काल यवन जैसे व्यक्ति को भी, एक बर्बर को भी, कि ये बहुत ही सुंदर देखने लायक एक व्यक्ति है। श्यामम, उनका वर्ण श्याम था, सांवले रंग के थे, पीत कौशेय वाससम, वाससम अर्थात उनके वस्त्र पीत रंग के थे, पीले रंग के थे, और किस चीज के बने हुए थे, कौशेय, कौशेय अर्थात रेशम। रेशम को कौशेय क्यों कहते हैं, कोश से निकलता है वो, तो इसलिए पीत कौशेय वाससम। तो भगवान के शरीर की कांति और वस्त्र का वर्णन करने के बाद अब उनके चेहरे और आभूषण आदि के वर्णन करेंगे। श्रीवत्स वक्षणम भ्राजत, तो उनके वक्ष स्थल पे श्रीवत्स का लक्षण था। श्रीवत्स एक बाल है जो भगवान के वक्ष स्थल पर रहता है, जो चमक रहा था। कौस्तुभ आमुक्त कंधरम, आमुक्त अर्थात जो आभूषित है, कंधर उनका गला, उनके गर्दन, उनका गर्दन जो है वो कौस्तुभ मणि से अलंकृत था। पृथु दीर्घ चतुर्बाहुम, पृथु अर्थात चौड़े, दीर्घ अर्थात लंबे, चतुर्बाहुम तो उनको चतुर्भुज भगवान का दर्शन हुआ, जिनकी भुजाएं बहुत चौड़े थीं और लंबे भी थे। नव कंज अरुण ईक्षणम, कंज अर्थात कमल, नव कंज अर्थात बहुत नया कमल, बहुत ताजा सुंदर कमल। अरुण ईक्षणम, अरुण अर्थात लाल, जैसे अरुणोदय होता है ना, ईक्षणम अर्थात आंखें, तो भगवान कृष्ण की आंखें कैसे थी, एक नए लाल कमल के समान रंग उनकी आंखों का था, वो खिले हुए थे। सूर्योदय के बाद सूरज का रंग कैसा होता है, पीला सा हो जाता है, लेकिन सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है उस समय सूरज का रंग कैसे होता है, हल्का लाल सा होता है, तो वो है अरुण। इसलिए सूर्योदय और अरुणोदय में थोड़ा हल्का अंतर होता है। तो नव कंज अरुण ईक्षणम, नित्य प्रमुदितम श्रीमत सुकपोलम सुचिस्मितम, तो मुखारविंदम बिभ्राणम स्फुरन मकर कुंडलम। अब उनके मुखारविंद का वर्णन कर रहे हैं, मुखारविंदम कैसे था उनका मुखारविंद, अब याद रखिए कौन देख रहा है, काल यवन देख रहा है, बहुत ध्यान से देख रहा था कौन बाहर आएगा, तो ध्यान से देख रहा था, भाग्यशाली व्यक्ति देख पाया। तो नित्य प्रमुदितम, उनका चेहरा कैसे था, नित्य प्रसन्न, भगवान श्री कृष्ण का चेहरा जो है, मुखारविंद जो है, सदैव प्रसन्न रहता है। श्रीमत और तेजस्वी प्रकाशमान, चमक रहा था उनका चेहरा। सुकपोलम, और उनके जो कपोल हैं, उनके गाल हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। शुचि स्मितम, हल्की मुस्कान थी, स्मित हास्य था उनके मुखारविंद के ऊपर। बिभ्राणम मुखारविंदम, तो अपने मुखारविंद में उन्होंने ये दर्शाया था ये सब चीजें। स्फुरन मकर कुंडलम, तो कानों में मकर कुंडल था जो थे, जो चमक रहे थे। अब अपने ही आप मन में सोचने लगा काल यवन, ये सुंदर दृश्य भगवान कृष्ण का देखा, अब ये सोचने लगा, क्या सोचने लगा, वासुदेवो ही अयम इति पुमान, ये व्यक्ति अयम, ये व्यक्ति वासुदेव इति, ये निश्चित ही वासुदेव ही है। श्रीवत्स लांछनः, क्योंकि उसने उसके चिन्ह श्रीवत्स का है वक्षस्थल के ऊपर। चतुर्भुजो अरविंदाक्ष, उसके चतुर्भुज हैं और उसकी आंखें कमल के समान है, अरविंद अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, अरविंद अर्थात कमल। वनमाली अति सुंदर,
वनमाला पहनी हुई है और बहुत सुंदर है। लक्षण ही नारद प्रोक्त ही, ये सारे लक्षण जो मैं देख रहा हूं नारद मुनि ने भी ऐसे ही लक्षण मुझे बताए थे कि जब जाओगे तो ऐसे देखोगे श्री कृष्ण को। आपको याद होगा हमने कल चर्चा की थी कि नारद जी थे जिन्होंने कि काल यवन को यहां भेजा था। क्यों भेजा था? काल यवन को बहुत घमंड हुआ था अपने शक्ति का। शक्ति कहां से पाई थी? शिव जी की उपासना करके, बहुत घोर तपस्या करके, और ऐसे एक वरदान पाया था कि मैं यदुओं के लिए भयंकर भयानक डर का कारण बन जाऊं, और इसलिए जहां भी वो जाता कोई उसका सामना नहीं कर सकता था, इतना शक्तिशाली था वो। फिर ऊब कर वो नारद जी के पास आए कि बताइए आप कि मुझसे सामना करने वाला व्यक्ति कौन है यहां पर। तो नारद जी ने कहा सीधे जाओ मथुरा जाओ, वहां पे यदुवंशी हैं, तुम्हें तो बिल्कुल योग्य है तुम्हारा सामना करने के लिए, वहां कृष्ण हैं बलराम हैं। तो दोनों का विस्तार में वर्णन नारद मुनि ने किया और ध्यान रखा काल यवन ने, क्योंकि पहचानना चाहिए ना कौन हमारा शत्रु है, किससे युद्ध करना है किससे नहीं करना है। तो लक्षण है नारद प्रोक्त ही, अपने मन ही मन काल यवन ऐसे सोच रहा है बिल्कुल वैसे ही लक्षण है इस व्यक्ति के जो कि नारद मुनि ने कहा था। इसलिए निश्चित ही ये वासुदेव कृष्ण है, न अन्य भवितुम अर्हति, और कोई नहीं हो सकता। निरायुधस चलन पदभ्याम, ये व्यक्ति ही वासुदेव वो मथुरा के बाहर आया है बिना कोई आयुध के, बिना कोई शस्त्र के, और पदभ्याम चल के आया है, पैदल आया है। युद्ध से अनेन निरायुध, इसलिए मैं भी इससे युद्ध करूंगा बिना कोई शस्त्र लिए हुए, मैं भी खाली हाथ जाऊंगा इसके सामने। वो खाली हाथ आया है तो मैं भी खाली हाथ जाऊंगा और इसके साथ युद्ध करूंगा। तो पूरी तरह से अब हौसला बढ़ गया था, उत्साहमय अवस्था में युद्ध करने के लिए काल यवन सामने आया। उधर से श्री कृष्ण बाहर निकल रहे थे और अचानक क्या हो गया? इति निश्चित्य यवन, ऐसे निश्चय करके जब ये यवन आगे चल रहा था, प्राद्रवत्तम पराण मुखाम अन्वधावज जिघृक्षुस्तम दुरापम अपि योगिनाम, तो वहां जो सामने जिनसे वो युद्ध करना चाहता था वो क्या कर रहे थे? प्राद्रवत्तम, वो भाग रहे थे। कैसे? पराण मुखान, पराम मुखन, अपने मुख को दूसरी ओर करके भागे जा रहे थे। तो गुस्सा आया काल यवन को, अरे हमने सामने युद्ध करना चाहिए, क्षत्रिय को थोड़ी ऐसे भागना चाहिए युद्ध भूमि से। ये सामने तो आया वासुदेव, परंतु जैसे मैं सामने आया पीठ दिखाकर भाग गया। प्राद्रवत्तम परान मुखम अन्वधावज, इसलिए अनुधावज, अनु अर्थात पीछे पीछे जाना, अनुस्मरण, अनु ये शब्द हम बहुत बार सुनते, अनुधावज। तो काल यवन को गुस्सा आया, उस वासुदेव कृष्ण के पीछे पीछे भागने लगा। जिघृक्षुस, क्यों? उसको पकड़ने के लिए। उनको किनको पकड़ना चाहता था? कृष्ण को, जो कि दुरापम अपि योगिनाम, जिनको योगियों को द्वारा भी पकड़ा जाना असंभव है, बहुत कठिन है, ऐसे श्री कृष्ण को भागते भागते पकड़ना चाहता था मूर्ख काल यवन। तो जैसे जैसे पीछा करने लगा काल यवन कृष्ण का, फिर आगे चल के क्या हुआ? काल यवन पकड़ पाए कि नहीं कृष्ण को? पकड़ पाए तो क्या हुआ, नहीं पकड़ पाए तो क्या हुआ, और कृष्ण भागे क्यों? पहली बार ऐसे हम वर्णन सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना पीठ दिखाया युद्ध में और भाग गए वहां से, और उनका शत्रु पीछा कर रहा है भाग के, रोको रोको। तो आगे चल के क्या हुआ? जब काल यवन श्री कृष्ण का पीछा कर रहा था,
यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल शाम 7 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम महाराज जी को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर कथा के लिए। 3 बार जोर से हरि बोल कह के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और 2 दिन यह कथा जारी रहेगी, तो भक्तों से निवेदन है कि कल और परसों अधिक संख्या में कथा का लाभ लीजिए। कथा ठीक शाम को 7 बजे प्रारंभ होगी। जन्माष्टमी महोत्सव के लिए यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे कि फूलों की हार बनाना, किचन में सेवा करना। तो विशेषतः माताजियों से निवेदन है कि ये सेवा निभाने के लिए कल सुबह आप 10 बजे मंदिर में आइए। इससे पहले भी जो माताएं आना चाहती है आ सकती है, उनके लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रसाद की भी व्यवस्था की जाएगी। तो विशेषतः हार बनाने की सेवा और किचन में जो सेवा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी के लिए जो भक्तों की सेवा सूची है वो कल नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी, कृपया आप उसे देख लीजिए। आज का प्रसादम पुरस्कृत किया है श्रीमती माधवी पाटिल माता जी ने, तो हम निवेदन करते हैं श्रीमती माधवी पाटिल माता जी से कि वे आ गया है। उन्होंने आज का प्रसादम उनकी माता पार्वती बाई इनकी स्मृति में पुरस्कृत किया है, तो हम माता जी को धन्यवाद देते हैं। 3 बार जोर से हरि बोल कह के, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बैठे रहिए, भजन होगा, उसके पश्चात दर्शन और सबके लिए महाप्रसाद।
कृष्णदेवभवन्तं वन्दे कृष्णदेवभवन्तं वन्दे मम मानसमधुकरम् अर्पयानि जपद पङ्कजमकरन्दे मन्मानसमधुकरम् अर्पयानि जपद पङ्कजमकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे यद्यपि समाधिषु विदिरापि पश्यति न तावक् न कग्रमरीचि यद्यपि समाधिषु इदमे चामिने सम्यक्तवाचोत तदपि कृपाद्भूतमेचिम् इदमे चामिने सम्यक्तवाचोत तदपि कृपाद्भूतमेचिम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे भक्तिरोदञ्चति यद्यपि माधव न त्वया मम तिल मात्रे भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्रे सनातन कलिताद्भुत रसभारम् अयम् अविलोलत याद्य सनातन कलिताद्भुत रसभारम् दिवसतो मेत्यमिहामृतनिन्दते बिन्दं माधुरिमसारम् सतो मेत्यमिहामृतनिन्दते बिन्दं माधुरिमसारम् कृष्णदेव भगवन्तं भवन्तं वन्दे कानतमधुकरं अर्पयानि जपदं पङ्कजमकरं भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे भगवान की जय। हरे कृष्ण।